पूज्य संत महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, प्रसंग चल रहा है जीवन की नीरसता के नाश से व्यर्थ चिंतन का अंत करना। तो एक रहस्य मानव जीवन के संबंध में यह जानने योग्य है कि चूंकि मुझे अपने आप में जीवन नहीं मिला, अपने आप में सरसता नहीं मिली, इसलिए रस की खोज में हम बाहर बाहर दृश्य जगत की ओर आकर्षित होते हैं। कभी कभी किसी किसी साधक का ऐसा ख्याल बनता है कि क्या बताऊं, मेरा ध्यान जो है वो संसार में भटकता फिरता है, इसलिए भगवत भजन मुझसे नहीं बनता। ऐसा कोई कोई साधक सोचता है। आप लोगों को भी लगता होगा, यहाँ बैठे हुए कई भाई बहन इस ढंग से सोचते होंगे कि क्या बताएं, मेरा मन जो है, चित्त जो है, वो संसार में और संसार के दृश्यों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में भटकता फिरता है, इसलिए मेरे द्वारा भगवत भजन नहीं बनता। ऐसा सोचते होंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि अपने अंतर में जीवन का आधार मुझे नहीं मिला। अपने में जो अपना है उससे अनुराग मेरा नहीं हुआ। अपना जो निज स्वरूप है उसमें मेरी स्थिति नहीं हुई। अविनाशी से अविनाशी योग नहीं हुआ। तो योग में सरसता है, निज स्वरूप के बोध में आनंद है, निज प्रभु की मधुर स्मृति में रस है। तो हम सभी भाई बहनों को चाहिए वही रस। उस पर हमारी दृष्टि नहीं गई, वह रस अपने को नहीं मिला, तो जीवन की विविध प्रवृत्तियों के द्वारा हम दृश्य जगत के संयोग बनाकर, दृश्य जगत का संयोग बनाकर उससे मन बहलाना चाहते हैं। रस तो है नहीं कहीं, नाशवान में वह रस कहाँ जो मानव हृदय को तृप्त कर सके। तो वस्तुओं और व्यक्तियों के संयोग में रस है नहीं, इसलिए तृप्ति होती नहीं है। फिर भी अपने अंतर के रस की अभिव्यक्ति नहीं हुई तो मन, चित्त इत्यादि जो हमारे भीतरी बाहरी बहुत प्रकार के साथी हैं, इनके द्वारा हम दृश्य जगत में विचरण करके किसी न किसी के साथ संयोग बना के मन बहलाने का उपाय करते रहते हैं। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ घूमने गए थे, बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ भोजन किया था, बड़ा अच्छा लगा था। ऐसे खेल तमाशे देखे, बड़ा मजा आया था। तो आया था, अभी बताओ अभी तुमको कैसा लगता है? तो अभी तो भाई थक करके आ गए हैं, अब थोड़ा विश्राम ले लेंगे, सो लेंगे और कल उठ के फिर देखेंगे। तो मजा आया था और चला गया है, और उसी की उम्मीद में फिर एक नया संकल्प लेकर बैठे हैं। तो दृश्य जगत के वस्तुओं से और व्यक्तियों से कभी हम अपने को हटाते ही नहीं है कि स्वयं अपने आप में जो अविनाशी आनंद और रस है उसकी अभिव्यक्ति का कोई अवसर मिले। और जब तक भीतर भीतर नीरसता रहती है तब तक मन और चित्त की दशा स्वाभाविक रह ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे ही ये सब ऑर्गन्स हैं, जूम्स हैं, सब ये जो हैं ये हमारी सहायता के लिए हैं। तो हमको भीतर से अच्छा नहीं लगता तो बाहर देखना पसंद करते हैं, और बाहर देखना क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए मन और चित्त में सब बाहरी बातों के चित्र बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, संकल्प उठते रहते हैं, मन के मोदक खाते रहते हैं हम। ऐसा होगा तो बड़ा मजा आएगा, ऐसा होगा तो बड़ा मजा आएगा, सोचते ही सोचते जिंदगी निकल जाती है और बेमजे में आखिरी सांस टूट जाती है। ये होता है। तो साधना में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में ध्यान स्थिर नहीं होता, घर घर के काम में काम अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा नहीं लगता, मीठा नहीं लग रहा है, इसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे आपके जीवन दाता ने हम लोगों को बनाया है, तो इसलिए बनाया है कि हम शांति के रस में, स्वाधीनता के रस में, प्रभु प्रेम के रस में अपने को सदा सदा के लिए आनंदित कर सकें। तो वो रस जब तक जीवन में प्रवाहित नहीं होता है तब तक नीरसता रहती है, और भीतर भीतर नीरसता रहती है तो वृत्तियां सब बाहर बाहर बिखरती रहती हैं। ये है मनुष्य के जीवन का दर्शन और मनोविज्ञान। सलाह क्या है संत की? संत की सलाह ये है कि तुम मन और चित्त के पीछे मत पड़ो। मन ऐसा खराब, चित्त ऐसा खराब, ये मत सोचो। तुम ऐसा सोचो कि इनकी चंचलता, इनकी विकृति कब मिटेगी? जब मेरा वर्तमान सरस होगा तब मिटेगी। तो जीवन की सरसता में सब प्रकार की गतियां शांत होती हैं। सरसता में संत कबीर की वाणी है, वे कहते हैं मनमस्त हुआ तब क्यों बोले। जो बातचीत करने की आवश्यकता आदमी को मालूम होती है ना, अकेले बैठा दो तो सब सब परेशान होते हैं कि भाई अकेला अकेला अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है तो दिल बहलाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पांच दस की मंडली में रहना चाहिए, मिलजुल के बातचीत करना चाहिए, सुख दुख एक दूसरे से कहते रहना चाहिए। तो बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? सुनने वाले साथी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अंतर में सुना सुना है। तो संत कबीर कहते हैं मनमस्त हुआ तब क्यों बोले, और जो भीतर के रस में मस्त हो गया तो बोलने की आवश्यकता नहीं, साथी की जरूरत नहीं। फिर आगे कहते हैं हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जिस रस की खोज है उसे, उस रस के अगाध सागर को उसने पा लिया और उस रस में वो डूबा हुआ है तो इधर उधर क्यों डोलेगा? जरूरत ही नहीं है उसको चलने फिरने की, कहने सुनने की, बोलने की। एक महिला मेरे साथ काम करने वाली थी, मैं महाविद्यालय में थी, वो एजुकेशन बोर्ड में थी, और तरह तरह के काम थे उनके पास, घूमने घामने का भी था, भ्रमण इत्यादि भी था। एक दफा बातचीत हो रही थी तो समय कैसे कटता है इस पर चर्चा चल पड़ी, सब लोगों की बातें इस तरह की होती रहती। वो कहने लगी कि मुझको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, काम करना होता है तो काम करती हूँ, और काम करना खत्म हो जाए तो ट्रेन है तो क्या, और दफ्तर है तो क्या, और घर है तो क्या, मैं अपने ध्यान में डूब जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने समय कितना समय निकल गया और कब मैं अकेली हूँ। उनको कोई तकलीफ ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि उन्हें आता था अपने आप में रहना, और अपने आप में रहना जिसने सीख लिया, अंतर के रस का स्वाद जिसको मिल गया, उसको बाहर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम सब लोग साधक वर्ग के भाई बहन जो हैं, वो बैठ करके अपनी अपनी दशा को देखें। थोड़ा घूम घाम आए, थोड़ा दिल बहलाते आ गए, थोड़ा मिलजुल के आ गए, थोड़ा ग्रंथों का पाठ कर लिया, थोड़ा व्याख्यान कर लिया, सुन लिया, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सारी तैयारी किस बात के लिए है? ये सारी तैयारी इस बात के लिए है कि ये सब जो मेरे साथी जुटे हुए हैं आज, इन साथियों का साथ छूटने से पहले अपना जो नित्य संबंधी है उससे भेंट मुलाकात हो जाए, कि जिसके फल स्वरूप मुझे शरीर और संसार की जरूरत ही शेष न रहे। अपने आप में जो अविनाशी जीवन है उसमें अखंड आनंद है, तो वो मुझे मिल जाए कि बाहरी सुखद परिस्थितियों के बदलने का अपने को कोई भास ही न रहे, ऐसा होना चाहिए। तो प्रश्न उठाया गया था कि व्यर्थ चिंतन मिटता क्यों नहीं है। स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि अपने जीवन की नीरसता के कारण नहीं मिटता है। तो नीरसता कैसे मिटेगी, नीरसता उपजी क्यों? तो अगर मैं मनोविज्ञान के हिसाब से बताऊं तो एक महीना क्लास हम लोग लेते थे, मनुष्य के जीवन में नीरसता आई कहां से? संत के पास बैठ करके पढ़ना शुरू किया तो उसका एक वाक्य में उत्तर है, नीरसता जीवन में आई क्यों? तो ज्ञानी जन कहेंगे कि निज स्वरूप में स्थिति नहीं है इसलिए नीरसता है। विश्वासी जन कहेंगे कि अपने प्यारे की विस्मृति हो गई इसलिए नीरसता है। मैंने अपने को समझाया तो मैंने कहा कि रस का मूल स्रोत, जीवन का मूल स्रोत, ज्ञान का मूल स्रोत, जिसमें से सातत्य निकलता है, जिसमें से कंटिन्यूटी रहती है, उसकी विस्मृति हो गई। तो उधर से जब मैंने अपने को विमुख कर लिया तो भीतर में नीरसता भर गई, और संसार के साथियों के बीच में रहते हुए भी अनेक प्रकार की अनुकूलताओं को सुखद मान करके जी बहलाते हुए भी भीतर 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 वह नीरसता व्यक्ति को सताती रहती है, अभाव सताता रहता है। और जो सजग व्यक्ति होते हैं वे इस बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि मेरे जीवन में जो अंतर्निहित नीरसता है उसका कारण ये है कि हम जीवन के मूल स्रोत से विमुख हो गए। और नहीं तो आप सच मानिए, सिद्ध पुरुष की बात तो सिद्ध पुरुष जाने, ये साधन काल की चर्चा मैं कर रही हूँ कि साधक की दृष्टि जिस क्षण से वास्तविक जीवन की ओर चली जाती है, अनंत परमात्मा की ओर चली जाती है, उसी क्षण के उसके भीतर की नीरसता और निराशा का नाश हो जाता है। केवल यह ध्यान चला जाए कि अरे हम कहाँ भूले थे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि हम तो अनंत तत्व से बने हैं, हमारा जो जीवन है वह तो अमरत्व से बना हुआ है, तो मुझे तो वो ही चाहिए। कहाँ भूल गए हम, मेरा तो समर्थ स्वामी है, मेरा तो नाथ परम प्रेमास्पद प्रेम का अगाध सिंधु है, मुझे तो उसका प्रेम चाहिए। तो ऐसा कि अपने को क्या चाहिए, इस अर्थ में वास्तविक जीवन पर ही दृष्टि चली जाए तो उसी में इतना उत्साह और इतनी आशा बढ़ जाती है कि वर्तमान की नीरसता खत्म होने लगती है। आरंभ में आगे चल करके तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। तो महाराज जी यह सलाह दे रहे हैं कि नीरसता के कारण जब तुम्हारे मन में चित्त में बड़ी चंचलता और विकृति दिखाई देती है तो मन और चित्त के पीछे पड़ना छोड़ दो। मेरा मन बड़ा खराब है, मेरा चित्त बड़ा खराब है, मेरे मन में बहुत विकार है, मेरे चित्त में बड़ी चंचलता है, ऐसा सोचना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यह गलत बात है। सही बात क्या है? सही बात ये है कि चूंकि मैंने यह भूल रखा है अपने जीवन में कि मुझे व्यक्तियों के संयोग से रस मिलेगा, बहुत से सामानों से सुख मिलेगा, ये जो भूल अपने जीवन में मैंने रखा है, इसलिए यह मन और चित्त बेचारा वस्तुओं और व्यक्तियों की ओर जाता रहता है, भटकता रहता है। तो क्या करें? तीन बातें महाराज जी ने हम लोगों के सामने रखी। नीरसता का नाश कैसे होगा? तो पहली बात रखी कि दुखी मात्र के दुख से करुणित होना, सुखी मात्र के सुख से प्रसन्न होना, यह मानवता का लक्षण जो है, इस लक्षण को धारण करोगे तो नीरसता मिट जाएगी। अपने व्यक्तिगत सुख दुख में हम लोग फंसे रहते हैं, इसलिए जीवन में नीरसता रहती है। व्यक्तिगत सुख के भोग में पड़े रहो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता भाई बंधु दस सदस्य एक परिवार में हैं, जो व्यक्तिगत सुख भोग का लालची होता है वो अपने निकटवर्ती संबंधियों तक के सुख की परवाह नहीं करता। ऐसा होता है। महाराज जी कहते थे, अपना अनुभव सुनाते थे। एक बार उन्होंने बताया कि एक सज्जन मित्रता मानते थे स्वामी जी महाराज से और ले जाते थे अपने घर में कभी कभी भोजन कराने के लिए। बहुत पुरानी बात है, जब स्वामी जी महाराज को बहुत लोग नहीं जानते थे तब की बात है। तो महाराज कहें कि मुझे इतना दुख होता था देख करके उसके घर में खाने का सामान खूब अच्छी तरह से थाली परोस दी जाती थी। उस घर में बच्चे भी थे, उस घर में बुढ़े भी थे, उस घर में स्त्रियां भी थी। तो थाली जब वो लग जाती सबकी, तो उसके बाद एक एक कटोरी में खूब पूरा घी गर्म करके भर के उस आदमी के पास रख दिया जाता था और छोटे छोटे बच्चे मामूली मामूली खा रहे हैं और वो आदमी खुद अकेले सब खा लेता था घी। स्वामी जी महाराज को अच्छा नहीं लगता था, तो इन्होंने पता लगाया होगा, पूछा पाछा होगा भाई ऐसी कैसी बात है। तो मालूम हुआ कि ये पहलवानी करते हैं, तो उनके ध्यान में ही नहीं आता है कि शरीर के पोषण के लिए मन को कितना कठोर और हृदय को कितना शुष्क बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिस घर में भूखे सूखे खाए, उस घर का बड़ा सयाना आदमी अगर अकेला एक कटोरी घी रोज पी जाए तो शरीर तो उसका मोटा हो जाएगा। पहलवानी में वो जरूर आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसका हृदय कितना कठोर हो जाएगा और हृदय की कठोरता में कितनी नीरसता है, तो जीवन में रस तो नहीं रहेगा। शरीर में मांस बढ़ जाए, पुट्ठे मजबूत हो जाए, पहलवानी में दूसरे को जिसके प्रतिद्वंदी के साथ पहलवानी करे उसको पटक दे भले, लेकिन हृदय में जो कठोरता और शुष्कता आ जाएगी उससे उसे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए महाराज जी ने कहा कि पहला उपाय करो नीरसता का नाश करने के लिए, उदार बनना सीखो। उदार बनने का अर्थ क्या है? कि दुखियों के दुख में करुणित होना और सुखियों के सुख में प्रसन्न होना सीखो। तो करुणा और प्रसन्नता का रस जो है वह अनेक प्रकार के विकारों का नाश करने में मददगार। और आप हमारा भी आपका भी सभी भाई बहनों की जानी हुई बात है कि जीवन में से जब विकार निकल जाते हैं तो निरस्ता मिट जाती है। ये विकार जो है जीवन का और हृदय की कठोरता जो है ये नीरस बना के रखता है। एक उपाय ये बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई रस तो है स्वाधीनता में, जो सभी साथियों और सब सामानों से अपने को मुक्त कर सकता है, असंग रह सकता है, देहातीत जीवन का आनंद जो ले सकता है, उस स्वाधीनता में रस है। तो तुम तो पराधीन बनके जीवन को सरल बनाना चाहते हो, अमुक प्रकार का खाना खाने को मिलेगा तो बड़ा सरस लगेगा, अमुक प्रकार की मंडली में मनोविनोद होगा तो बड़ा सरस लगेगा। तो पराधीन का जीवन कहीं सरस हुआ है? नहीं होता। जितने जितना भोग प्रवृत्ति में शामिल होते जाओ, उतनी उतनी जड़ता बढ़ती जाएगी, दुर्बलता बढ़ती जाएगी, अभाव बढ़ता जाएगा, नीरसता बढ़ती जाएगी, रस नहीं मिलेगा, इसलिए आनंद नहीं मिलेगा। वो कहते हैं अपने को स्वाधीन बना लो। तो स्वाधीन जो हो जाता है उसका जीवन सरस हो जाता है, और सरस जीवन में किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन की उत्पत्ति नहीं होती है। और तीसरी बात बता रहे हैं कि प्रेमी हो जाओ। जो लोग प्रेमी बन जाते हैं उनकी भी नीरसता का नाश हो जाता है, और प्रेम के रस में सब प्रकार की गतियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं, सब प्रकार की गति शांत हो जाती है। तो सरसता से व्यर्थ चिंतन का नाश होता है, ना कि दबाव डालने से, कि मन और चित्त की निंदा करने से, कि जबरदस्ती करने से, निरक्षता का नाश नहीं होता, व्यर्थ चिंतन मिटता नहीं है। प्रेमी जनों की चर्चा आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, और कभी कभी अपना हृदय भी जब स्नेह से उमड़ता है तो आदमी बातचीत करना बंद कर देता है, चुप हो जाता है। साहित्यकार भी लोग भी लिखते हैं कि जब हृदय उमड़ता है तो वाणी मूक हो जाती है। ठीक है ना? अपने लोगों को भी मालूम है, जिससे आपका स्नेह है, बहुत दिनों के बाद उससे भेंट मुलाकात हो जाए और हृदय स्नेह से उमड़े तो चुप हो जाते हैं कि बोलते हैं? चुप हो जाते हैं। होता है ऐसा, क्या हो गया कि भाई मैं क्या बताऊं, बड़ी गरीबी है मानव जीवन की कि अपने अंतर में रस का सागर है और हम बाहर से जी बहलाने में परेशान हैं। अगर भीतर से स्नेह का भाव उमड़ता है तो कोई गति होती नहीं है, सब रुक जाती है। गति का होना ही इस बात का प्रमाण है प्रवृत्ति में, बाहर की चंचलता और अंतर की चंचलता सब ले लो, चित्त मन और चित्त की चंचलता भी ले लीजिए, और बाहर से हर समय कुछ न कुछ करते रहने के धन में लगे रहना, ये भीतर बाहर की जितनी भी गतिशीलता और चंचलता है ये सब रस के अभाव में है। तो रस की वृद्धि जब होती है तो गति रुक जाती है। और उदाहरण मुझको बहुत अच्छा लगता है, रामचरितमानस में कई बार ऐसा प्रसंग आया है, भरतलाल जी बहुत व्याकुल होकर के क्या क्या कहने के लिए गए हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, जाके ऐसे कहूंगा ऐसे कहूंगा ऐसे कहूंगा। पहुंच गए वहां और जब भेंट हो गई तो प्रेम की बाढ़ में गति रुक जाती है। बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आमने सामने दोनों भैया बैठ गए हैं और गोस्वामी जी कहते हैं, को किछु कहा ही न को किछु पूछा, लिखा है को किछु कहा ही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम के प्रवाह में मन की गति शांत हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, जोर डाल करके पकड़ करके मन की गति को रोकना चाहते हैं। तो नीरसता के मारे हमने अपने मन को चित्त को सबको इतना विकृत बना लिया, इतना चंचल बना लिया कि रोकने से भी इनकी गति रुकती नहीं है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, संभाल में ही नहीं आता है। लेकिन सच्ची बात क्या है? तो सच्ची बात तो यह है कि जीवन में प्रेम रस की वृद्धि हो तो सब प्रकार की गतिशीलता शांत हो जाएगी, हो जाती है। मुझको इतना अच्छा उदाहरण लगता है, कौ किछु कहा ही न कौ किछु पूछा, ना कोई कुछ कह रहा है ना कोई कुछ पूछ रहा है। तो भगवान राम के पास भी बहुत सी बातें की पूछने की, माता पिता का समाचार कहो, राज्य का समाचार कहो, अपना समाचार कहो, कब आए कैसे आए, इनके पास भी बहुत कुछ पूछने को था और उनके पास भी बहुत कुछ कहने को था। लेकिन ना कोई कुछ कह रहा है ना कोई कुछ पूछ रहा है, क्या हो गया? तो दो प्रेमियों के मिलन में रस की ऐसी बाढ़ आ गई कि उसमें सब प्रकार की गतियां डूब गईं। बैठे हैं चुपचाप एक दूसरे को देख रहे हैं। एक बार स्वामी जी महाराज के साथ हम लोग एक बड़े संत से मिलने गए। महाराज जी से उनकी मित्रता थी। रांची में जंगल में पहाड़ पर एक प्रसाद कह करके आश्रम बना हुआ था, नाम था उसका प्रसाद। तो उसी में वो आकर के संत रहा करते थे। बड़े अच्छे संत थे, बहुत ऊंची निष्ठा थी उनकी, जीवन बड़ा सुंदर था उनका। आधुनिक युग के मनोविज्ञान के विद्वान थे, सन्यासी और निज स्वरूप की स्थिति में उनकी निष्ठा थी। बहुत ऊंचे संत थे, ये प्रेमी जन थे। स्वामी जी महाराज जब रांची में जाए तो पूछे कि उनका नाम है प्रज्ञान पाद, स्वामी जी का नाम है प्रज्ञान पाद, तो प्रज्ञान पाद जी हैं क्या, पता लगाया जाए, मालूम हो जाए कि हैं, तो स्वामी जी उनसे मिलने जाए। तो हम लोग गए मिलने के लिए, कई बार गए थे, एक बार की घटना है। मिलने के लिए गए वहां, तो वहां जब उनके आश्रम में पहुंचो तो आश्रम का ही वायुमंडल इतना शांत लगता, इतना शांत लगता कि ऐसा मालूम होता कि जैसे बाहर से रोम रोम से शांति जबरदस्ती भीतर घुस रही है, ऐसा लगता है। और जब उनके कुटिया के पास पहुंच गए, ऊपर के मंदिर में रहते थे, उनको मालूम हो गया कि स्वामी जी महाराज पहुंच रहे हैं, तो भीतर से वो निकल करके आते दरवाजे तक महाराज जी का स्वागत करने के लिए। तो इधर से सवारी में से मोटर में से उतर के स्वामी जी महाराज चढ़ते और उधर से प्रज्ञान पाद जी आते इनसे मिलने के लिए। तो शरीर की लंबाई महाराज जी से भी 6-7 इंच उनकी ऊंची थी और खूब भव्य मूर्ति थी, बड़ा स्वस्थ बुलंद शरीर था और हृदय ज्ञान और प्रेम का आधार तो था ही। तो आए निकल करके स्वामी जी से मिलने के लिए और इधर से महाराज जी आए, इधर से ये दोनों आए, थोड़ी दूर का फासला ही रह गया और दोनों संत एकदम चुपचाप खड़े हो गए जहां के तहां, न हिले न डुले न बोले। हम सब साथी लोग देख रहे हैं, कोई कोई सीढ़ी पर चढ़ते समय नीचे ही खड़ा है, कोई ऊपर चढ़ गया है और उनके भक्त लोग, प्रज्ञान पाद जी के भक्त लोग उनके पीछे खड़े हैं, अपने महाराज जी के बच्चे हम लोग सब इनके पीछे खड़े हैं और देख रहे हैं एक दूसरे को। इतनी शांति, इतनी गंभीरता, ऐसा लगे कि जैसे मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं खड़े हो गए। न बात करें, न बोले, न चले, न मिले, न कुछ, थोड़ी थोड़ी दूर पर। तो ऐसा होता है हृदय का भाव उमड़ने से, ऐसा होता है कि बाहर की सब प्रकार की गति जहां के तहां ज्यों के त्यों रुक जाती है। कुछ साथी लोग स्वामी जी महाराज के साथ पांडिचेरी अरविंद आश्रम में भी गए थे और वे लोग बताते थे कि वहां जाकर भी ऐसा ही हुआ। अरविंद जी मिले और दोनों एक दूसरे के सामने हुए,
तो नजदीक पहुंचने से पहले जहां से कहां दोनों के दोनों एकदम शांत होकर खड़े हो जाए। तो कितने समय तक ऐसे ही निकल जाता है, क्या हो गया, हो क्या गया? यह तत्व जो है ज्ञान का प्रकाश और प्रेम का रस, ये इतना सरस है, इतना सरस है कि उसके उद्भव में शरीर और संसार और स्थान और समय सारे परसेप्शन खत्म हो जाते हैं, इनकी कोई धारणा रहती ही नहीं है। तो जो शुद्ध है, जो सत्य है, जो रसमय है, जो आनंदमय है, उसमें प्रवृत्ति और गति कैसी? वो जहां से कहां ज्यों के त्यों बस। फिर कुछ समय बीता तो आगे बढ़ के प्रज्ञान पाद जी ने स्वामी जी को हृदय से लगाया, प्यार किया, हाथ पकड़ा और कहा चलिए महाराज भीतर चले। तो भीतर ले गए, कमरे में जाकर के दोनों एक दूसरे के सामने बैठे, फिर वहां उसी तरह की शांति छा गई, बातचीत कुछ नहीं, बैठे हैं दोनों एक दूसरे को और हम लोग सब चारों ओर गोला बना करके बैठ गए थे और देख रहे थे कि कैसा अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है। अब इन दोनों संतों के भीतर से कौन सी लहर निकल रही थी, वायुमंडल को छू रही थी, क्या क्या उनके भीतर था तो वो ही लोग जाने, लेकिन इतना मालूम होता था कि इनको इनका देह भाव जरूर खत्म हो गया, ऐसा लगता था। तो उदाहरण है केवल अपने लोगों के सामने कि हम सब लोग आंतरिक रस की वृद्धि का उपाय करें, मन और चित्त जाएगी नहीं और दृष्टि द्वारा संयोग के बिना हम कैसे रहेंगे। अगर ऐसा सोचेंगे तो मन चित्त दृश्य जगत की ओर से हटेगा नहीं। तो जीवन है, अपने में है और एक अकेला उस जीवन रस से ही आदमी हर प्रकार से तृप्त होता है और पूर्ण होता है। तो महाराज जी ने तीनों तरह की बातें सामने रख दी, उदार होकर नीरसता का नाश करो, स्वाधीन होकर नीरसता का नाश करो और प्रेमी होकर नीरसता का नाश करो। उदारता, स्वाधीनता और प्रेम यही रस के आधार हैं और इन्हीं से जो रस अभिव्यक्त होता है उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए इस रस की वृद्धि पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए, मन और चित्त की विकृति को पकड़ करके झक मारते रहो, ये बड़ी भारी भूल होगी, किसी भी प्रकार से उसको हम लोग मिटा नहीं सकेंगे। और जिन महानुभावों ने सत्य की स्वीकृति के द्वारा अहम का परिवर्तन कर लिया, दृष्टिकोण का परिवर्तन कर लिया, जीवन के अर्थ का परिवर्तन कर लिया, उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरे पास मानसिक बुद्धि है भी कि नहीं है, कभी विरोध का कुछ पता ही नहीं चलता कि हम चाहे कुछ और मन चाहे कुछ। ऐसा ये हम लोग स्प्लिट ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं साइकोलॉजी में, एक ही व्यक्ति दो तरह की बातें करते रहते हैं और कभी कभी तो लोगों को इतना भ्रम हो जाता है कि अपने ही मन के विभाजन को वे अंतः प्रेरणा कह देते हैं, भगवान की आवाज कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तरह तरह के साधक मुझे मिलते रहते हैं और कितने विधि विधान से उनको यह दृष्टिकोण मुझे देना पड़ता है कि यह बात दैवी नहीं है भाई, यह तुम्हारी भूल का परिणाम है, अपने ही जीवन के संघर्ष में ये स्प्लिटिंग हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, एक बार ऐसी बात आई, दूसरी बार ऐसी बात आई, तीसरी बार ऐसी बात आई, तो मन की आवाज को लोग दैवी आवाज कह करके और उल्टा पलटा काम करते रहते हैं और दुख में पड़े रहते हैं। तो सो नहीं होना चाहिए, खूब अच्छी तरह से इस बात को जानिए, सत्य से मैंने अपने को विमुख कर लिया, मैंने मुख मोड़ लिया, परमात्मा की परम प्रेमास्पद प्रभु की विस्मृति से मेरा यह हाल हुआ है। तो उस मूल स्रोत से अपने को विच्छिन्न मान लेने के कारण जीवन में निरक्षा भर जाती है, और उसकी ओर उन्मुख होते ही नीरसता का नाश होता है और नीरसता का नाश होने से मन और चित्त की शुद्धि, शांति, स्वस्थता तीनों बातें हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर से मन और चित्त की स्वस्थता, मन और चित्त की शांति और इनकी शुद्धि, ये सब कुछ हो जाता है रस की अभिव्यक्ति से। तो इनके पीछे ना पड़े, रस की अभिव्यक्ति के लिए शक्ति की स्वीकृति को प्रधान कर दें। ऐसा करेंगे तो अपना जीवन बदलेगा, अपना जीवन बदलेगा तो ये सब साथी बदल जाएंगे। और मैंने तो प्रेम की चर्चा में ऐसा भी सुना है कि प्रेमी के जीवन में प्रेम की बाढ़ आती है तो ये जो कई जन्मों से मेरी भूल से थकी हुई इंद्रियां हैं, भोग प्रवृत्ति से इंद्रियां थकती हैं, झूठ मूठ हम लोग नाम लगाते हैं कि ये इंद्रियां तो विषय लोलुप है। आप सोच करके देखिए कि मैं विषय लोलुप हूँ कि इंद्रियां हैं। मैं हूँ। क्या होता है, सिनेमा देखने वालों का हाल पूछो, आंखें थकती जाती हैं, कितनी तरह की तकलीफें उसमें पैदा होती रहती हैं और उसका उपाय करते रहते हैं और वही काम करते रहते हैं। एक एक माँ बाप बच्चे को लेकर के आए, 8-10 बरस का बच्चा, तो हमने चश्मा लगाए हुए था, तो पहली बार मैंने देखा उसको, तो हमने कहा कि ये क्या बात है भाई, इतने छोटे बच्चे को चश्मा कैसे लग गया। तो उन्होंने कहा कि इसकी आंख बहुत खराब हो गई। कैसे खराब हो गई, आपको तो क्या जाने कब से खराब हुई, हमको तो पता नहीं था, स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ अक्षर ये नहीं पढ़ सकता था। तो इसकी टीचर ने कहा कि इसकी आंख की जांच कराओ, चश्मा दिलाओ। तो चश्मा दिलाया मैंने, तो डॉक्टर ने क्या कहा, तो डॉक्टर ने कहा कि टीवी देखने से ऐसा हो गया, बहुत नजदीक बैठ करके टेलीविजन देखने से ऐसा हो गया। तो कितने दिन हुए, तो उसने बताया कई महीने हो गए। चश्मा देने से कोई फायदा है, हाँ फायदा तो है। तो हमने धीरे से उसकी माँ से पूछा कि आपने घर में से टीवी हटा दिया कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बहन जी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमने कहा ये बच्चा भी देखता है, तो हाँ देखता है, जरा इसको दूर बैठा देते हैं और यूं कर देते हैं और यूं कर देते हैं, मतलब 10 तरह का इंतजाम करो लेकिन उस बुराई को मत छोड़। तो ये तो हाल है अपना। तो बेचारी इंद्रियां विषय लोलुप है कि विषय लोलुपता मुझमें है, मुझमें है, इंद्रियों का दोष तो है नहीं। तो कितनी गलत बात है, कितना बड़ा भ्रम है कि हम सब लोग कहते हैं कि इंद्रियां तो विषय लोलुप है इसलिए उधर उधर ही जाती हैं और मैं तो रोकने वाला हूँ, मैं तो इनको संभालने वाला हूँ। बात तो उल्टी है, वो नहीं जाना चाहती हैं, उनको तो थकावट लगती है, उनमें बीमारी पैदा हो जाती है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वे स्वयं प्रकाश्य नहीं है। तो जो परप्रकाश्य है, जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, जो स्वयं कर्ता नहीं है, वो कैसे विषय लोलुप होगा। तो विषय लोलुपता अपने में है, अपने को बदलना है, और हम बदल जाएं तो ये सब बदल जाएं। और प्रेमी जन तो ऐसा करते हैं, गोपियों से आपस की चर्चा की बात कभी कभी होती रहती थी, आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार कई कई प्रसंग में। तो क्या होता है, तो कन्हैया आ रहा है वन से गऊ चरा के, तो संध्या का समय है, गोधूली का समय हो रहा है, बंसी की ध्वनि दूर से आ रही है, सब घर के भीतर से काम छोड़ छोड़ करके बच्चे बुढ़े पुरुष स्त्री सब अपने अपने दरवाजे लग करके राह देख रहे हैं, इधर से आएंगे, ऐसी ऐसी चाल होगी, ऐसा ऐसा मुखड़ा होगा, ऐसी ऐसी ध्वनि सुनाई देगी, हम दर्शन करेंगे, हम आनंद लेंगे करके सब दरवाजे दरवाजे लग गए हैं, आ रहे हैं गऊओं के साथ साथ और बंसी बजाते हुए और अपनी भुवन मोहिनी दृष्टि से सबको आनंदित करते हुए निकल के चले जा रहे हैं, चले जाते हैं और कितनी सखियां, कितने प्रेमी जहां के तहां खड़े खड़े पूछ रहे हैं कि अरे भाई भैया कन्हैया आया कि नहीं आया, ये क्या बात है, तुम तो टकटकी लगाकर देख रहे थे कैसे नहीं आया, इधर से तो गया निकला ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं, झूठी बात बोलते हो, तुमने तो खूब देखा। तो अधीर होकर के प्रेमी कहते हैं कि क्या बताएं, इन आंखों ने जब से उनको देखा मुझे छोड़कर चली गई। क्या अर्थ है? तो अर्थ तो ये है कि जीवन का जो उद्गम है, रस का जो स्रोत है, उससे एक बार भी कनेक्शन हो जाए तो ये सब समष्टि शक्तियों के भाग जो आज मेरे साथ हैं उसके साथ लग जाती हैं। तो रहती ही नहीं है तो देखोगे क्या, है ही नहीं अपने पास, फिर उसकी परेशानी क्या। तो यह जीवन का वैज्ञानिक सत्य भी है, जीवन का दार्शनिक सत्य भी है और यह प्रेम पंथ का सत्य भी है कि इनकी जो विकृति या चंचलता जिससे हम लोगों को तकलीफ हो रही है ये केवल अपनी भूल का परिणाम है, अन्यथा जिस मूल उद्गम में से हम सबकी रचना हुई है, मेरी भी और इस सारी समष्टि शक्तियों की भी, उससे संयुक्त होते ही सबकी चंचलता सबकी अशुद्धि सदा के लिए खत्म हो जाती है, आनंद ही आनंद रह जाता है। आज बोलिए, समय है, अब शांत हो जाइए।